بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب موجود ہیں۔ شہزاد صاحب استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، ہمارے اساتذہ کی جگہ پہ ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے ہسٹری آف قرآن کے موضوع پر، ایک کرٹیکل اسٹڈی، کم و بیش 20 سال کی ان کی تحقیق پر مبنی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب لکھنے کا خیال ان کو کیوں آیا، اس تحقیق کا مقصد کیا تھا، ان 20 سالوں میں انہوں نے کس دشت کی سیاحی کی، اور ان کی اس کتاب کا نتیجہ کیا ہے، علوم اسلامیہ کے طلبہ اس کتاب سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور امت کے اندر جو جمہور علماء اور فقہا اور مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید کی جو جمع اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ قرآن صحابہ ہی کے ادوار میں جمع ہوا، رسول اللہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو مختلف انداز میں پڑھنے کی جو قراتیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، شہزاد صاحب کی خدمت میں ہم نے درخواست کی کہ تھوڑا ہمیں وقت دیں تاکہ ہم ان کی کتاب کا ایک تعارف حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔
وعلیکم السلام،
خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ، آپ سنائیے۔
بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ 20 سال شہزاد صاحب ایک پروجیکٹ پہ لگا دیے اور اپنی جوانی کے یہ قیمتی ایام آپ نے، کیا پرابلم کیا تھی، یعنی شروع کہاں سے ہوئی بات کہ یہ کتاب لکھنے کی نوبت آئی؟
اتفاق دیکھیے کہ ہم نومبر کے مہینے کا بھی خاتمہ ہوا، دسمبر کی پہلی تاریخ میں بیٹھے ہیں، تو نومبر 1999 ہی کی یہ بات ہے کہ جب المورد کے ضمن کے زیر سایہ ایک پروگرام مرتب ہوا جس میں ماسٹر اسٹوڈنٹس کو ہم نے پڑھانا تھا، تو میرے ذمے جو سبجیکٹ پڑھانے کے لیے آیا وہ قرآن مجید کا متن اور اس سے متعلق علوم تھے۔ تو جب میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تو اس میں ظاہر ہے کہ حصہ قرآن کی تاریخ کا بھی تھا۔ قرآن کی تاریخ کے بارے میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا، سرسری معلومات تھی، پڑھنا شروع کیا پڑھانے کے لیے، تو پھر ذہن میں آیا کہ یہ جو کچھ تاریخ ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے حدیثوں کے ذریعے سے بھی اور تاریخ کے ذریعے سے بھی، یہ تو کسی طرح سے کامن سینس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ روایتیں بیان کر رہی ہیں وہ کم سے کم جو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اس کے خلاف نظر آئی۔ تو میں نے جب یہ پڑھانا شروع کیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اس کو پڑھا دوں گا، ایک چیز ذمہ داری ہے مکمل کر دوں گا، لیکن پھر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی جو جمع و تدوین ہے اس کا کیا معاملہ ہے، جو سب سے بڑا سوال تھا، کیونکہ بظاہر روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید کا جو فائنل جمع ہے، جو اس کی فائنل ترتیب ہے، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی، اور دوسرا سوال جو بہت بڑا تھا میرے سامنے وہ قرآن کی قراتوں کا تھا کہ قرآن کی متعدد قراتیں ہیں، 11 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مختلف قرآن موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ قراتیں ویسے موجود ہیں بلکہ وہ ملکی لیول پہ ان کا نفاذ ہے۔ تو مجھے جس جگہ سے انسپریشن حاصل ہوئی یہ تھی کہ استاد گرامی جاوید احمد غامدی سے تو تعارف ظاہر ہے کہ اس سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا، تو استاذ حمید الدین فراہی جو ہم سب کے بہت بڑے محسن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک آیتوں میں سے ایک آیت ہیں، غیر معمولی قرآن کے محقق ہیں، انہوں نے قرآن کی جمع و ترتیب پر کلام کیا اور بتایا کہ دیکھیے کس طریقے سے ہم قرآن کی تاریخ کو سب سے پہلے خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ کلو تھا میرے سامنے، اور دوسری طرف جو قراتوں والا معاملہ تھا وہ بھی ایک کلو کے طور پہ اس طرح سے موجود تھا کہ غامدی صاحب کے جو استاذ ہیں اور فرائی صاحب کے جو شاگرد ہیں امین حسن اصلاحی، انہوں نے متواتر قرات ہی کو اصل قرات گردانا اور یہ کہا کہ میں قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اسی پہ کروں گا۔ تو اس طرح کی دو چیزوں کا ہیولا آپ کہہ لیجئے، گائیڈنس کا موجود تھا، ہیلے سے زیادہ کہنا چاہیے۔ تو پھر یہ سفر شروع ہوا نومبر 1999 میں، جس میں میں نے پھر اس کا ایک حصہ پی ایچ ڈی کا حصہ بھی رہا، جو جمع و ترتیب والا حصہ ہے وہ پھر میں نے پی ایچ ڈی کے زمن میں کیا 2002 سے لے کے 2010 تک، پھر 2010 سے لے کے جو اب 2018 تک پھر میں نے قراتوں والا حصہ، آپ کہہ سکتے ہیں کتاب کے دو بڑے حصے ہیں، ایک جمع و تدوین کی روایتیں ہیں اور اس کے متعلق روایتیں ہیں، اور ایک وہ حصہ ہے جو قراتوں سے متعلق ہے۔ تو بس یہ چونکہ یہ پھیلا ہوا بہت تھا، اس میں روایات کے بے پناہ ترک تھے، اور اسی طرح سے قراتوں کی روایات میں چونکہ ممالک کی مجھے سیاحت کرنی پڑی، مراکش میں گیا، وہاں کی جو آپ کہہ لیجیے جو صورت حال تھی اس کو بالمشافہ دیکھا، براہ راست جانا، تو اس وجہ سے یہ بہت پھر محیط رہا۔ اور میں اس سلسلے میں آپ نے چونکہ سوال کیا، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ادارے نے المورد جنہیں میری بہت غیر معمولی اس سلسلے میں سرپرستی کی، اور میں دیگر کام بھی کرتا رہا، انتظامی امور میں انوالو رہا، لیکن الحمدللہ इन 20 सालों में बहुत वक्त मिल गया कि मैं इस रिसर्च को पाया तकमील तक पहुंचाऊं। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि हरफ आखिर और किसी भी इंसानी काविश के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि एक दिल में जो एक सख्त आरजू थी कि इस मसले के खोज लगाया जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोशिश की है अपनी बिसात की हद तक कि जो इसमें असल सूरत हाल है वो लोगों के सामने आ जाए।
ठीक। अच्छा, दो हिस्सों में किताब को जब आप तकसीम करते हैं, एक कुरान मजीद की जमो तदवीन के हवाले से और एक किरातों के हवाले से जो कुरान को पढ़ने से मुतल्लिक है, मुख्तसरन बताइए सुनने वालों को कि ये जो दोनों पहलू हैं इन पर हमारा रिवायती नुक्ता नज़र क्या है और उनकी जो बिनाए इस्तदलाल है, उनका जो आर्गुमेंट है वो किन चीज़ों पर खड़ा हुआ है।
देखिए, हमारे जो रवायती नुक्ता नज़र है उसके बारे में हम ये बिल्कुल मुसलमा तौर पे जानते हैं कि बुनियादी तौर पे वो ट्रेडिशन से एमिनेट करता है, और ट्रेडिशन में उनके यहाँ कुरान, हदीस, सुन्नत, तारीख सब एक मिली हुई एक ट्रेडिशन है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें ज़्यादा इन्हिसार उनका हदीस और तारीख पे होता है। कुरान मजीद अगरचे ज़ेर बहस होता है लेकिन नज़री हद तक होता है। जब इतलाकी मामला ज़ेर बहस आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उम्मत के जो असातीन हैं उनका रुझान अखबार अहाद की तरफ और तारीख की तरफ ज़्यादा हो जाता है। जहाँ तक रवायती नुक्ता नज़र है जम्मो तदवीन कुरान का या कुरान की तालीफ का, तो उसमें अगरचे कुछ हम मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे धारे हैं जो मुनफरद हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो चीज़ हमें मालूम होती है वो ये है कि कुरान मजीद की आखिरी जो तरतीब है वो हज़रत उस्मान के ज़माने में की गई, और इसमें जो जमहूर का नुक्ता नज़र है वो ये कि तरतीब इश्तहादी है, यानी ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि तरतीब तौकीफ़ी, आयतों में तो जो सूरतों के अंदर आयतें हैं उसमें तो सब ये कहते हैं कि तरतीब तौकीफ़ी है, लेकिन जो सूरतों की तरतीब है इसमें इसके बारे में दोनों आरा मिलती हैं, लेकिन जो जमहूर की राय है वो ये है कि ये इश्तहादी है और सहाबाए कराम ने अपने इश्तहाद से इसको मुरतब किया। और इसके लिए दलील ये भी दी जाती है कि किताबुल मसाहिफ जो कि किताब है इब्न अबी दाऊद की, उसमें अब्दुल्ला इब्न मसूद, वही इब्न और दीगर सहाबा के जो मसाहिफ की तस्वीर सामने आती है उसमें ये तरतीब मुख्तलिफ थी। चुनाचे इब्ने नदीम की जो किताबुल फहरिस्त है उसमें उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और उबै इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जो बयान की है मुसहफ की तरतीब, उसमें वो बहुत कुछ मुख्तलिफ है उससे जिसको हम उस्मानी तरतीब कहते हैं।
अच्छा,
तो इस वजह से फिर ये राय बनी कि ये तरतीब इश्तहादी है, और हज़रत उस्मान ने फिर अपने दौर में आके इसको एक ख़ास तरतीब दी। इसलिए आप देखें कि उनको ये उसको हम उस्मानिक मुसहफ कहते हैं, हमारे यहाँ ये टर्म जो है वो मुतारिफ़
मुसफ़
होगी
उस्मानी।
मुसहफ उस्मानी की। सो ये इसी वजह से मुतारिफ हुई। और फिर इसके साथ साथ ये भी है कि चूंकि इस सिलसिले में हमारे यहाँ जो राय है वो ये है कि कुरान मजीद से कोई बराह रास्त रहनुमाई नहीं मिलती कि हमें जो ये तरतीब मिली है इस तरतीब से है, इस वजह से फिर सारे का सारा इन्हिसार रवायतों पर हुआ। जहाँ तक इसके दूसरे हिस्से का ताल्लुक है किरातों के बारे में, तो आप वहाँ पे भी सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं है कि जो जमहूर किराते हैं इस वक्त जिनके बारे में ये दावा किया जाता है, मैंने तो इस दावे को चैलेंज किया है और साबित करने की कोशिश की है कि किरातों में से कोई भी मुतवातिर नहीं है जिनके बारे में दावा किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इन्हिसार खबर वाहिद पे है। और चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी रवायात मिल गई हैं जिसमें सहाबा कराम ने एक ही आयत को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ा, तो इस वजह से हमारे जो अहले इल्म थे उन्होंने ये कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें एक चीज़ मिले और उसको हम छोड़ दें, और अगर इसको छोड़ेंगे तो फिर खबर वाहिद पर इन्हिसार करना मुमकिन नहीं होगा, फिर बाकी हदीसें हम क्यों माने। तो इस कश्मकश की वजह से फिर खबर वाहिद की जो के तरीके पर जो उनको रवायतें मिली उनको उन्होंने कुरान मजीद के एक्सेप्ट किया, और ना सिर्फ यहाँ तक कि उसको इक्वेट किया, एक योनरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसको वो कहते हैं मनसूख तिलावा दूनुल हुक्म, यानी इसमें यह है कि आयत तो है ये मनसूख हो गई हुई है यानी कुरान में मौजूद नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे रजम की आयत है, या जैसे मिसाल के तौर पे जो रज़ात की आयत है कि 10 रज़ातों से या 5 रज़ातों से बंदा बच्चा जो है वो हराम हो जाता है या रज़ाई रिश्ता बन जाता है, तो इस तरह की और भी हैं, तो वो उनके बारे में ये पूरा है कि मनसूख तिलावा हैं और दूनुल हुक्म है, यानी एक तो ये है ना कि वो आयात मौजूद हैं और कुरान के मतन से बाहर हैं, तो उनको वो कुरान मजीद को के इक्वेट करते हैं बाज़ मियारात अगर पूरे हों, जाहिर है ये आप पूछेंगे तो जैसे अरबी सीख होनी चाहिए, मुसफ़ उस्मानी के मुताबिक हों और उनकी सनद दुरुस्त हो, तो वो उसको बहरहाल कुरान मानेंगे, लेकिन ये एक उससे आगे बढ़ के कदम उठाया कि मनसूख तो हो गई हैं मुसफ़ में मौजूद नहीं है लेकिन हुक्म मौजूद है, तो उनको गोया कुरान के बराबर ही उन्होंने इक्वेट कर दिया। तो ये एक आप कह लीजिए कि एक गुंजलक सूरत हाल थी जो दरपेश थी, जिसको सामने रख के फिर ये मैंने काम शुरू किया और कोशिश की कि इसमें हकीकत को जाना जाए।
ठीक। अच्छा, ये जो आपकी किताब है इसमें उलमा और जुम्हूर जो उम्मत के फुकहा हैं उनका नुक्ता नज़र तो आपने बयान किया, और उनका इस्तदलाल भी
जी
रिवायात से है।
जी
आपका जो कंट्रीब्यूशन है, यानी आपका जो क्रिटिसिज्म है, उसकी बेस क्या है? दोनों पहलुओं से हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसको ले लेते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि कुरान तो सब तआरुफ, और फिर ये कि रिवायात हैं सैयदना उमर से कि उन्होंने सैयदना अबूबकर को कहा जब जंग यमामा में हुफ्फास को शहीद कर दिया गया कि अब कुरान जमा किया जाए,
जी
तो ये तारीखी रिकॉर्ड तो एक दूसरा मंजरनामा पेश कर रहा है।
जी हाँ,
इसको आपने किस पहलू से काउंटर किया?
तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे जो जो किताब का बायस बना जिस चीज़ का, वो ये था कि अहदीस जो कि मौजूद हैं, कि जो एक मुख्तलिफ मंज़र पेश कर रही हैं, उन पे मुहद्दिसीन ही के जो उसूल हैं उनका री एप्लीकेशन उनकी की जाए, दोबारा से इत्तला किया जाए। तो सबसे पहले तो ये काम किया गया कि वो अहदीस जिनको बज़ाहिर महसूस हुआ कि ये कुरान के भी ख़िलाफ़ हैं, अकलाम के भी ख़िलाफ़ हैं, और यानी इंसान की एक जो ज़ौक बनता है दीन का, उसको सामने रख के महसूस होता है कि ये दीन की बात, ये तारीख़ की बात इस तरह से नहीं हो सकती। तो चूंकि वो एक शक का कांटा आप कह लें पैदा हो गया था, तो फिर उन्हीं उसूलों को रीअप्लाई किया,
यानी उनकी सनद और इसकी
सनद और मतन दोनों पर उनकी रीएप्लीकेशन की, जिससे ये महसूस हुआ कि जिन रवायात से ये इतनी बड़ी एक हम कुरान मजीद के बारे में राय कायम कर रहे हैं, वो सनदन भी ठीक नहीं है और मतनन भी। और दूसरी चीज़ जो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही साहब की जो सूरह क़यामा की तफसीर है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि ख़ुद कुरान मजीद अपनी तारीख़ को ख़ुद बयान कर रहा है। और देखिए, सूरह क़यामा मक्की सूरतों में से है, तो गोया मक्की सूरतों ही में अल्लाह ताला ने अपनी पूरी स्कीम बता दी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को किस तरह से नाजिल करेंगे, नजमन नजमन यानी किस्तों में नाजिल करेंगे, फिर इसको दोबारा से एक नई तरतीब में मुरतब करेंगे, तरतीब नज़ूली इख्तियार नहीं की जाएगी, और फिर इज़ा क़रअना हो फत्ता बे कुराना, कि जब इसकी किरात अल्लाह ताला करेंगे, तो वो कहा पैगम्बरों को कहा गया कि फिर आपने इसकी किरात इसकी पैरवी करनी है, पिछली किरात की पैरवी नहीं करनी। तो मेरे सामने जैसे आपने कहा जो चीज़ें थीं वो दो थीं, एक खुद कुरान की तारीख को पहले कुरान से देखा जाए, और उसके लिए उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही की जो एक बुनियादी आप कह लें तहकीक है, जिसके बारे में इंसिडेंटली उन्होंने भी ये कहा कि ये उनकी मुनफरद राय नहीं है बल्कि मावर्दी की राय है। मैंने उस राय को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मैं नहीं जान पाया कि वो किस जगह से, क्योंकि मावर्दी की तफसीर छप चुकी है, उसमें तो उन्होंने ये राय बयान नहीं की। दूसरी चीज़ जो मैंने जिसको अप्लाई किया वो ये थी कि ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें मैं ये इजाफा कर दूं कि हदीस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो मैंने मुहद्दिसीन ही के लिए, और जो तारीख़, क्योंकि रवायतें दो तरह की हैं, एक वो हैं जो मरफू रवायतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की नस्बत है, और एक है जो तारीख़ी रवायात हैं। तो जो हदीसें हैं जिनकी नस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उनको तो मैंने मुहद्दिसीन के असूल पर परखा दोबारा से, और जो तारीख़ी रवायात हैं उन पर मैंने इब्न खुलदून का जो प्रिंसिपल है, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स अपने मुकदमे में बयान किए, मैंने उनको इन्यूमरेट कर दिया कि देखिए इब्न खुलदून ने तारीख़ के ये प्रिंसिपल्स बयान किए, मैं इन्हीं को सामने रख के तारीख़ी रवायात को जज कर रहा हूँ। इसमें आप एक तीसरी चीज़ का भी मैं अगर चाहूँ तो इजाफा कर सकता हूँ, और वो ये है कि इंतकाल तारीख जो है, यानी तारीख कैसे मुंतकिल हुई, ये ख़ुद एक साइंस है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगरचे इसके अंदर तवातुर का हिस्सा बयान किया जाता है, तवातुर से मतलब ये है कि कितनी बड़ी तादाद किसी चीज़ को मुंतकिल करे कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं कुरान मजीद के मामले में, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम महज तवातुर पर नहीं खड़े हुए, बल्कि हमने बाज़ ऐसी चीज़ों को जो अहाद के तरीके मुंतकिल हुई हैं या आइसोलेटेड रिपोर्ट्स, उन पर भी हमने इतलाक कर लिया तवातुर का। तो ये तीन वो चीज़ें हैं, यानी रीएप्लीकेशन ऑफ हदीस एंड हिस्ट्री प्रिंसिपल्स, फ़राई साहब ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग कि कुरान मजीद खुद अपनी तारीख बयान करता है, और तीसरी ये चीज़ कि जो हिस्टोरिकली कुरान मुरतब हुआ, तो ये जो इंतकाल का प्रोसेस है ये कोई मजहबी टर्म नहीं है कि तवातुर है या फलां है इजमा है, ये साइंस, ये आप कह लें हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स की अपनी टर्म है। तो इनको फिर असर नौ इनका जायजा लिया, और इसमें खास तौर से मुझे अपने उस्ताद जावेद अहमद गामिदी की बहुत रहनुमाई भी हासिल रही, और ये बात कि इजमा तवातुर की जो टर्म्स हैं ये हैं क्या, ख़ुद कुरान मजीद से इनका कैसे हम इतलाक़ कर सकते हैं, और किस तरह से इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं मिसालों के ज़रिए से, इसमें मैं समझता हूँ कि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, उनकी रहनुमाई हासिल रही, जिसकी वजह से फिर कुछ कदर ये काम आसान हुआ।
बहुत ठीक। तो ये जो आपने फरमाया कि कुरान मजीद की जम्मू तदवीन के बारे में जो रिवायात तारीख़ी मवाद है उसको आपने रीअसेस किया कुरान मजीद की रोशनी में, जो फ़िक्र फराही का एक एक तरीका है चीज़ों को देखने का, उसके तहत उसको री इंटरप्रेट करने की कोशिश की। किरातों के बाब में ये कहा जाता है कि ये मुतवातिर है, जजरी ने भी इब्तदा में इसकी निशानदेही की। तो ये आपकी जो किताब है ये जब देखती है, दो पहलुओं से मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें। एक तो अपनी ज़ात में ये दावा कितना मोहकम है कि किरातें जितनी इस वक्त राइज हैं वो मुतवातिर हैं, और दूसरा ये कि ये जो मंसूब हो गई हैं किरातें बाज़ लोगों के नामों से, मसलन इस वक्त जो जिसको पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है किरात हफ्स उसको कहा जाता है, इसकी क्या वजह आपकी नज़र में बनी? आपकी ये किताब क्या इस पहलू पर भी लोगों की
जी,
रहनुमाई करती है?
सो जहाँ तक किरातों का ताल्लुक है, तो मैं पहले तो आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि ये दौरे हाजिर में अहले हदीस नुक्ता नज़र का कुछ थोड़ा बहुत गलबा हुआ, जिसके नतीजे में ये दावा बहुत ज़्यादा किया जाने लगा कि जो किरातें हैं इनको सबा मुतवातिरा कहने जाने लगा। लेकिन मैंने इसी किताब में फिर अपने असलाफ़ की चीज़ों को बयान किया। मैंने बताया कि देखिए कि ज़हाबी हैं मिसाल के तौर पर, या राज़ी हैं, या इससे पहले दानी हैं जिन्होंने किरातों को मुरतब करने का भी किरदार अदा किया, ख़ुद अबू बकर इब्ने मुजाहिद हैं जिनकी किताब उस्सबा है, उसमें जब उन्होंने इन किताबों जब इन कारियों का इंतखाब किया तो कहीं भी ये दावा नहीं किया कि ये मुतवातिर है। और मैंने अपने असलाफ में से, दौरे अव्वल के लोगों में से 12-15 बड़े जो लोग हैं उनका ना सिर्फ एक इंतखाब किया बल्कि उनके इक्तबासात दे दिए, जिसमें उन्होंने ये खुद कहा है कि इनके बारे में ये कहना कि ये मुतवातिर है ये बिल्कुल
तो
सरासर।
जजरी ने अपनी राय को तब्दील किया, कद अजनातु बिहादा।
फिर इमाम जो जजरी थे, जो जाहिर है कि उन्होंने नशर फिल किराअत अल अशर के वो मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने एक और किताब उनकी जो थी शुरू में उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि किरातें जो हैं मुतवातिर हैं, लेकिन इस किताब में नशर फिल किराअत अल अशर में उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये अगर ये किरातें अगर मुतवातिर होती तो फिर किरातों के मेयार बनाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी ये मेयार के वो सनद के लिहाज से ठीक हो फिर ज़रूरत ही नहीं है अगर मुतवातिर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस बात को रिवाइज़ किया और इस जगह पे मैं आ गया हूँ कि ये आहाद हैं। असल में इमाम इब्ने तैमिया के ज़माने में उनकी बाज़ इबारतों से हमारे अहले हदीस हज़रात ने नुक्ता नज़र निकाला कि हर वो चीज़ जो कतई है वो मुतवातिर है, मा फ़ादल कत फ़हुवल मुतवातिर, ये उनकी बात। तो इससे हमारे यहाँ आजकल के बाज़ अहले हदीसों ने ये चीज़ निकाली कि चूंकि जो ये जो तीन मियारात हैं ये कतईयत की तरफ लेके जाते
यानी
हैं
जो चीज़ कतियत का फायदा दे उसको
वो
मुतवातिर
मुतवातिर
के
कह रहे हैं।
कायम मकाम
तो
समझ
ये
लें।
वो कहते हैं ये तीन मियारात हैं, मियारात वही जो मैंने बताया कि उनकी अरबी दुरुस्त हो, मुसहफ़े उस्मानी में से किसी एक के में मुआफ़िक हो, और सनद उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफू होती हो। तो ये तीन जो चीज़ें हैं इनके ख्याल में ये उनको कतईयत का इफादा दे देते हैं, जब और वो कुल्लु मा यानी मा फादल कत फहुल मुतवातिर, तो वो उस तरह से इसको मुतवातिर करार दे देते हैं। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि हमारे कराची में जामिया फारूकिया की जो ये हुआ असल में ये कि पाकिस्तान में अहले हदीस हजरात का एक इदारा है मॉल टाउन में, उन्होंने एक 3 जिल्दों में किरातों पर एक एक रुश्त के नाम से एक रिसाला निकाला, और उसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो उलमा थे उनसे इस्तफसार किया, और वो इस्तफसार में उन्होंने भेजा कि देखिए ये किरातें मुतवातिर हैं या नहीं हैं। तो तकी उस्मानी साहब ने भी और जामिया फारूकिया के जो थे मोहतमिम, उन्होंने भी ये
मौला
लिखा कि
सलीम उल्ला
इनसे
खान साहब।
ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो आपने ये कहा है, ये तो ऐसे ऐसी बात ये नहीं है। सो उसके नतीजे में जो एक मजमूई तासुर बना इसके बावजूद, वो उन्होंने ये बनाया कि नहीं ये तो किताबें मुतवातिर हैं, और उनमें से किसी एक का जो इनकार है वो कुरान के इनकार के मुतरादिफ़ है। तो मैंने एक काम फिर ये किया कि इसमें एक चैप्टर है जिसमें इन सारी किरातों की सनदें जो कि बयान हुई हुई हैं, तो जिस चीज़ की सनद बयान हो जाए तो आप वैसे ही कह सकते हैं कि जो अहाता किताब में आ जाए वो तो कभी मुतवातिर हो नहीं सकती,
जी
मुतवातिर की तो सनद ही आप लातोसा होती हैं। तो मैंने फिर इब्नुल जज़री ने अपनी किताब में हर जो इन 7 कारियों की सनद दी हुई है, मैंने उनको ट्रेस करके बताया कि देखिए ना सिर्फ ये कि सनद के लिहाज से ये अहाद हैं जैसे कि हमारे असलाफ कहते हैं, बल्कि इनमें से अक्सर व बेशतर रवायात मुनकते हैं। और वो कैसे मुनकते हैं, देखिए जो 7 कारी हैं जिनका आपने भी कहा कि इनका इंतखाब अबू बकर इब्ने मुजाहिद ने किया, तो ये 7 कारी हैं ये आमतौर से 2री सदी हिजरी में रहे हैं, इनसे नीचे तो आपको सनदें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे अबू बकर इब्ने मुजाहिद जो हैं वो 4थी सदी में हैं, तो वो 1.5 सदी का जो पूरा अपना बता देंगे कि मैंने नाफे से ये 7 किरातें कैसे सुनी। लेकिन मिसाल के तौर पर नाफे से ऊपर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की जो है वो सनद ही मौजूद नहीं है। उसमें क्या है, उसमें यह है कि उनके उस्ताद ये थे, उनके उस्ताद ये थे, तो क्यास कर लिया गया कि चूंकि उनके उस्ताद ये थे और वो उस्ताद पहुंच जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 4 वास्तों से, तो भाई ये किरात वहीं से आई होगी। तो अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड में जाने तो ये हदीस भी नहीं बनती,
यानी सनद भी मुनकते
सनद ही
हैं।
मुनकते हैं सारों की, क्योंकि उन कारियों तक तो ये बिल्कुल सनद मौजूद है, कारियों से ऊपर सिर्फ असातिज़ा के नाम है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा मिसाल के तौर पर कि मलिक यौमुद्दीन या युकज़्ज़िबून की जो मैंने इस वक्त किरात सुन रहा हूँ ये मैंने अपने उस्ताद से सुनी और उन्होंने अपने उस्ताद से, बस अबू बकर इब्ने मुजाहिद भी और सारे जो जितने भी बड़े लोग हैं वो महज असातिज़ा के नाम बता देते हैं कि देखिए उनका उस्ताद ये है। तो फिर मैंने ये बताया कि देखिए जिनको हम मुतवातिर मान रहे हैं वो अहाद की भी जो वो किस्म है
उस पर
कि
भी
जिसमें
पूरा।
अहाद ही भी नहीं बनती मुनकते हैं ये वो हैं। और इसमें फिर मैंने ये भी एहतमाम किया है कि चूंकि उम्मत के हमारे बहरहाल हिस्सा है शिया और सुन्नी थाट दोनों, तो मैंने इस किताब में इसका एहतमाम किया है कि शिया थाट भी जहाँ खड़ी है जम तदवीन के बारे में भी और किरात के मामले में भी उनकी ओरिजिनल सोर्सेज से ये बताया जाए, ताकि बहरहाल जो हमारी पूरी मुस्लिम उम्मत है जो कि इन्हीं दोनों धारों का बुनियादी तौर पर मजमुआ है, ऐसा ना हो कि किसी एक की
तनुक्ता
बात
नज़र
बयान हो जाए।
सामने
हाँ जी,
ना।
तो दोनों का बयान किया।
जो दूसरा पहलू वो ये कि ये इन लोगों के नाम से किरातें क्यों मशहूर हैं मसलन, और दूसरा हम देखते हैं मग़रिब में तो बास किरातें राइज हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो उनका शुयू वहाँ कैसे हो गया?
तो ये ऐसे हुआ कि अबू बकर इब्ने मुजाहिद एक बहुत गैर उन बगदाद में वो उनके वो थे और उसकी उनकी एक बड़ी हैसियत थी। उन्होंने इनके बारे में ये कहा कि भाई किरातें तो सारी की सारी वो हैं कि जो काबिल लिहाज हैं, अलबत्ता ये सात कारी हजरात वो हैं कि जिनकी जिनका इतकान जो है, जिनका जो मुतकिन होना है, ये गैर मामूली है। तो उन्होंने इंतखाब किया, और उनसे पहले बाज़ और लोगों ने, किसी ने 20 का इंतखाब किया हुआ था, किसी ने 18 का किया हुआ था, किसी ने 16 का किया हुआ था, किसी ने 10 का किया हुआ था, तबरी ने 30 का किया हुआ था, अबू बकर इब्ने मुजाहिद ने, इन्होंने अबू उबैद ने इससे 20 या 25 का किया हुआ था। तो जैसे आप कहते हैं ना कि एक आदमी का जो इंतखाब है उसको शोहरत हासिल हो जाती है, तो उनका इंतखाब भी उनका असल में बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि उस ज़माने की जो उम्मत थी उसके पाँच बड़े एरियाज थे, कूफा, बसरा, मदीना, शाम और मक्का। तो उन्होंने हर एरिया से एक कारी को ले लिया और कूफा से उन्होंने तीन कारी ले लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि कूफा एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे किसी एक का इंतखाब मुमकिन नहीं है क्योंकि वेरिएशंस मौजूद हैं। तो तीन उन्होंने कूफा से ले लिए, ये तीन हो गए, और बाकी जो चार हैं वो एक एक शहर से ले लिए, एक मदीने से, एक मक्के से, एक कूफे से और एक बसरा से। तो इस तरह से उन्होंने, सॉरी, बसरा से और एक शाम से। सो इस तरह से उन्होंने सात कारियों का जब इंतखाब किया और उनकी सनदें उन्होंने बयान की, तो और उनकी एक हैसियत भी थी हुकूमत में, यानी जो दूसरी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो वज़ीर भी रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंतखाब, और फिर उन्होंने बाज़ इनके से मंसूब किया जाता है कि उन्होंने जो दूसरे कारियों थे जिन्होंने मिसाल के तौर पर मुसहफ़ उस्मानी से बाहर की बाज़ किरातों को पर इसरार किया, उनके ज़माने में उनको सज़ाएं दी गई और उनकी जिस हैसियत को फिर चूंकि मुसलमा तौर पर मान लिया गया, तो ये सात कारी फिर ज़्यादा मशहूर हो गए। और इन सात कारियों की मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बुनियादी वजह यही थी कि अपने अपने इलाके के ये नुमाइंदगान थे, और फिर मज़ीद एक बात ये हुई कि इन सातों कारियों के दो दो शागिर्द मशहूर हो गए, यानी इसको हम कहते हैं ना कि टू किरात कैनन कहते हैं, कि इन सात थे और सात के भी दो दो, तो 14 बन जाती हैं इस तरीके से। तो 14 किरातें थीं जो फिर मुंतकिल हुई, और उनमें से इत्तफाक ये है कि मुंतकिल करने वाले तो और थे, लेकिन हर कारी के दो दो कारी दो दो शागिर्द ज़्यादा मशहूर हो गए,
अच्छा, तो ये जो किरात हफ्स है ये असल में इसकी वजह
यानी
शोहरत हफ्स।
जी इनकी जो वजह शोहरत मिसाल के ये है कि जो हफ्स जो थे वो आसिम इब्ने अभी नजूद के शागिर्द थे, आसिम जो हैं कूफे के कारी थे, इनके दो बड़े शागिर्द थे, अबू बकर इब्ने अय्याश और दूसरे ये हफ्स बिन सुलेमान। तो हफ्स बिन सुलेमान की किरात मशहूर होगी। नाफे के भी दो मशहूर शागिर्द थे, वर्ष और कालून। तो वर्ष की जो थी वो आप कह लें मराकश की तरफ मशहूरी हुई और ज़्यादा तरीक वहाँ से पैदा हुए, और दूसरे कालून थे जो लिबिया वगैरह में वो चले गए। तो ये जो नाम है असल में, ये आप ये समझ लें कि ये कारी हैं, इन कारियों के जो शागिर्द हैं जिनको हम आगे से वो बयान करते हैं, उनमें से एक एक कारी की किरात के लिहाज से मशहूर हो गया। तो हरफ नाफे यानी किरात नाफे है, उसके तहत जो रवायत है मिसाल के तौर पे वो उनके दो शागिर्दों की है, तो एक शागिर्द एक इलाके के थे, एक शागिर्द एक और इलाके के। तो इन सात कारियों के आप समझ लीजिए मजमूई तौर पर 14 लोग 14 इलाकों में ज़्यादा मशहूर हो गए। और आज अगर आप पूछने आपने सवाल का दूसरा हिस्सा ये किया कि क्या वजह है कि ये फिज़िकली मगरब के इलाकों में पाई जाती है, तो मैंने अपनी किताब में इसको ट्रेस किया इस हिस्ट्री को, और ये बताया कि देखिए हुआ ये कि किसी भी किरात की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उलमा नहीं कर सकते, इसलिए कि ये इतनी बड़ी बात है कि जब तक स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी लोग तो तब्दील नहीं करेंगे। तो 252 हिजरी वो एक ऐसा साल था जिसमें कीरवान के जो काजी हैं, कीरवान नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अफ्रीका की वो जगह है जहाँ पे वो हमारी कीरवान यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के जो काजी थे उस ज़माने में काजी की हैसियत असल हुक्मरान की थी, यानी जिसे कहते हैं ना कि पावर बिहाइंड द थ्रोन, हुक्मरान तो कोई और थे लेकिन काजी अगर कुछ कह दे तो हुक्मरान चू नहीं करता था। तो इनके कीरवान के जो काजी थे उन्होंने ये कहा कि देखिए इमाम मालिक की जो फिका है वो ट्रैवल करते हुए अब आ गई है नॉर्थ अफ्रीका में, नाफे जो हैं वो इमाम मालिक के उस्ताद हैं,
ओके
तो अगर हमने इमाम मालिक की फ़िका अडॉप्ट कर ली है
तो उनकी किरात
तो हम क्यों ना उनके उस्ताद की किरात भी अडॉप्ट कर लें। ये बातचीत हो रही थी और एक वक्त वो आया पर जब उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा कि आज के बाद इस जामे मस्जिद में अल्लाह यकर अन्नास अल्ला बरफ़ नाफ़े कि लोग जो हैं इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे और हम इसको एक रॉयल डिक्री के तौर पर एक शाही फरमान के तौर पर नाफिज कर रहे हैं। ये वो जगह है, ये वाटर शेड आप कह लीजिए, जिसके नतीजे में फिर चूंकि जब स्टेट लेवल पर यह हुआ इसकी नफाज हुआ तो फिर ये वो टाइम है, 252 हिजरी है और आप देखें हम 1442 में गालिबन बैठे हुए हैं, तो इसमें ये 1000 साल से ज़्यादा का अरसा है जिसमें ये किरात जो है वो बाकायदा स्टेट लेवल पर पढ़ी जा रही है।
ठीक, तो आखिरी दो सवालात हैं मेरे और फिर उसके बाद हम खात्मे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि आप इस किताब में इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कुरान मजीद की जमो तरतीब तदवीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में हो गई थी। लोग सवाल ये पूछते हैं अगर हो गई थी तो वो कुरान का नुस्खा कहाँ है जो रसूलुल्लाह ने मुरतब किया था, और जो कुरान का नुस्खा हमें तुर्की में तोप कापी में जिसको कहते हैं अवलीन नुस्खा है उसकी हैसियत हकीकत तारीखी इस्नाद क्या आप इस किताब में चैलेंज करते हैं?
ठीक, तो जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से ज़बानी कुरान मजीद रिसीव किया और लिखा हुआ कुरान, ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम है कि वो उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उन्होंने एक रिसीव किया हिफ्ज़ के तौर पे, सबसे पहले हाफिज़ वो ख़ुद थे। कुरान का जो इंतकाल है वो मुरतब नुस्खों से सिरे से ही नहीं हुआ, वो ताबे थे, शागिर्दों ने लिख लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जो कुरान मुंतकिल किया वो ज़बानी मुंतकिल किया, उन्होंने इसको याद कर लिया। और अरबों की जो ये तारीख़ है याद करने की, अगर आप हिस्ट्री में जानना चाहें, इसलिए मुश्किल है इमेजिन करना क्योंकि आज हम राइटिंग ओरिएंटेड कल्चर में हैं, यानी आज के ज़माने में लिखा हुआ जो लफ्ज़ है वो इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है याद किए हुए लफ्ज़ पे, इसलिए कि कल्चर तब्दील हो गया। अगर आप उस ज़माने का, ना सिर्फ ये कि अरब कल्चर बल्कि बहुत सारी दुनिया के और कल्चर्स में ज़बानी याद करके मुंतकिल करने की एक आम रवायत थी। जैसे आपको मालूम है कि हज़रत बकर के बारे में है कि वो शजरा नसब के हाफ़िज़ हुआ करते थे, जीनियोलॉजीज हैं, तो अरबों के यहाँ ये जीनियोलॉजी का शजरा नसब का जो इल्म था जिसमें आप ट्रेस करते हैं अपने एंसेस्टर्स को कि फलां फलां का बेटा है, तो ये और इसके अलावा जो अशार थे उनको जबानी याद हुआ करते थे, उनके यहाँ एक जबानी ओरल ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग थी। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में कुरान मजीद को याद खुद भी किया और याद करवाया। जो याद करने वाले थे उनमें से वो लोग भी थे जिन्होंने लिख लिया अपनी मेमोरी के लिए, और शुरू शुरू में तहरीर के अंदर एराब नहीं हुआ करते थे, बाद में इंट्रोड्यूस हुए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो लिख भी लिया जाता तो एक हाफिज़ का वो मोहताज होता कि उसको आप कैसे पढ़ें, क्योंकि हाफिज़ तो यालमून तालमून को पता है कि इसमें से कौन सा पढ़ना है, लेकिन जो हाफिज़ नहीं है वो दोनों पढ़ सकता है, बाज़ दोनों में सेंस बन जाती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं निमोनिक एड, यानी हाफ़े की को मजीद एक लिहाज से वो एड देता है कि चले आपको जो याद है आपने उसका स्केलेटल मतन वो देख लिया। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि लिखा हुआ नुस्खा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं दिया, और ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बाज़ लोगों ने इससे इस्तदलाल किया कि क्योंकि कुरान मजीद में अल्फाज आ गए ना कि ज़ालिकल किताब, तो किताब का तसव्वुर जो हमारे यहाँ है वो ये कि वो लिखी हुई होनी चाहिए, तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि नहीं तो लिखी हुई किताब होगी तो हम इसको मानेंगे, जबकि हम ये जानते हैं कि किताब का जो लफ्ज़ है मुरतब चीज़ ही को कहते हैं, वो बाज़ दफ़ा आपकी मेमरी में होती है, कंप्यूटर में जो किताब है वो भी किताब होती है, PDF में भी किताब होती है, इसलिए किताब का लफ्ज़ या मुसम्मा लाजमन एक छपी हुई किताब या लिखी हुई किताब नहीं है। सो आपने तवातुर के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को याद करवाया, उन्होंने उनको आगे से याद करवाया और ये सिलसिला आज तक चला है।
लिखने वालों ने लिखा,
लिखने वालों ने लिख लिया, लेकिन वो जो सेकेंडरी आज भी देखिए जो लिखा हुआ छपा हुआ कुरान है वो एक हाफिज़ का मोहताज है। इस वक्त भी सूरत हाल ये नहीं है कि लिखा हुआ कुरान इंडिपेंडेंट है, लिखे हुए कुरान की तस्दीक एक हाफिज करता है, हाँ मैंने अपने उस्ताद से और उन्होंने अपने उस्ताद से ऐसे ही इसको सही पाया और मैं साइन कर रहा हूँ इसको, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिफ्ज़ है वो रवायत आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है टॉप कापी म्यूज़ियम के अलावा भी लोगों ने दावा किया है, मिसाल के तौर पर ताशकंद में है, इसी तरह से सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह में,
बर्मिंघम में जो हुआ उसको भी शामिल
जी, तो वो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि ये कोई हज़रत उस्मान के ज़माने में नुस्खा कोई जो उन्होंने 5 मुरतब किए थे और मुख्तलिफ जगहों भिजवाए थे, तो दावा ये किया जाता है कि फ़स यकफ़ी का हमल्ला पे जहाँ पे उनके खून के कतरे थे, तो बहुत सारे कुरान मजीद आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे इस आयत या इस लफ्ज़ पे वो दो या तीन नुक्ते होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल मुतहक्किक है। सलाउद्दीन मुनज्जिद हैं और भी दूसरे लोग हैं हमारे मुस्तशरकीन, ख़तों की जो का जो स्टाइल है उससे पता चल जाता है कि किस ज़माने के हैं, तो अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम होगा कि टॉप कापी म्यूज़ियम हो या दुनिया में इस वक्त जितने भी जगह पर जहाँ पर दावा किया जा रहा है इनमें से कोई एक भी उस्मान कुरान नहीं है, मुसफ़ उस्मानी नहीं है कोई एक भी, हाँ अलबत्त कापीज़ की कापीज़ की कापीज़ कहा सकते हैं आप, तीसरी चौथी कापी ज़रूर हैं लेकिन असल में से कोई भी नहीं है। उनकी जो डेटिंग जो जिनकी मुमकिन है वो भी करके देख लिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बताती है वो अहद बा अहद राइटिंग में इरतका हुआ है, इसको आप स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो स्क्रिप्ट है वो हिजाजी कुरान कहते हैं, जो उस्मान के ज़माने के हैं। उसी से आपका मैं इस सवाल का जवाब ही जोड़ देता हूँ, जो बर्मिंगम में डिस्कवरी हुई है उसके बारे में अलबत्ता ये ज़रूर है, चार फोलियोज़ वो दरियाफ्त हुए हैं, सूरह कहफ का आखिर और सूरह मरियम का शुरू, 18वीं और 19वीं सूरतें। तो इसमें अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि जब ये बर्मिंगम में ये दरियाफ्त हुआ, उसको जब उन्होंने ये देखा तो उसमें बिल्कुल जो आज का कुरान है उस आयतें बिल्कुल वही हैं। और उसकी जब उन्होंने डेटिंग की तो जो जानवर डेटिंग हमेशा करते हैं, जो छाल होती है, पार्चमेंट होती है, तो जो जानवर जिस ज़माने में ज़िंदा होता है उसका आप अंदाज़ा कर लेते हैं। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 ईयर्स के अंदर अंदर है। गोया उससे एक मज़ीद अंदाज़ा लगाया कि कातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़िंदा होगा जिसने ये लिखा। तो इसने ये एल्बा फैजली हैं, जो एक इटालियन खातून हैं, उन्होंने बर्मिंगम की लाइब्रेरी में उनके सामने अचानक ही फोलियोज़ आ गए। और फिर ये जो अल्फोंजो मिंगाना थे, वो भी एक मुहक्किक थे, 1920 के करीब वो जो मिस्र गए थे, वहाँ उस ज़माने में तरीका ये होता था कि मुख्तलिफ औराक पड़े हुए हैं, वो उनको कुरान समझते थे और वो ले आते थे। तो बर्मिंगम की लाइब्रेरी में 1920-22 से पड़ा हुआ है। तो आप समझ लें तकरीबन 100 साल के बाद एक खातून किसी वजह से वहाँ गईं और उनके सामने वो आ गए। जब उन्होंने उनको टेस्ट किया तो जब उन्होंने पहली झलक देखी तो उन्होंने कहा ये कोई बाकियों से हटके हैं। तो उससे फिर ये एक बहुत बड़ा कज़िया हुआ, ये 2015 और 16 की बात है, कि वो लोग कि जो ये कहते हैं कि यानी हज़रत उस्मान के बारे में तो सब मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद मुस्तशिकीन की है जो कहती है कि कुरान हज्जाज बिन यूसुफ या उसके भी बाद फाइनलाइज हुआ है। तो ये एक उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लो थी, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि कम से कम जो चार फोलियोज़ मिले हैं ये तो
उससे पहले के
और 30 साल के अंदर अंदर ही कातिब जिंदा थे। तो ये इतनी देर इसकी कैनोनाइजेशन नहीं हो सकी। इतफाक देखिए कि मैं अभी एक इक्सा कॉन्फ्रेंस पे था, इंटरनेशनल कुरान स्टडीज एसोसिएशन, तो वहाँ ये जो डॉक्टर एल्बा फैजली है वो आई हुई थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपने ये चार फोलियोस डिस्कवर किए हैं, ये इस वक्त वो फ्रांस में गालिबन होती हैं, यानी वो मुख्तलिफ जगहों पर रहती हैं, लेकिन कहने लगी कि मैंने और भी कुछ फोलियोज़ डिस्कवर किए हुए हैं। तो वो ईमेल पे उनसे बातचीत चल रही है जो उसी ज़माने के हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि करते करते आप सारे ही, क्योंकि मुंतशर जगह है ना, एक चीज़ हर जगह पे मौजूद नहीं है या एक कुरान, तो ऐन मुमकिन है कि अगले 10-15 सालों में यही कुरान जिसके लिए चार सफ़े मिले हैं
इसके बकिया
बकिया हिस्से मिल जाए। अगर ये हो जाता है तो फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इतनी बड़ी हुज्जत है कि कुरान मजीद की हकानियत पे। इसलिए देखिए हमारे जो मुस्तशकीन हैं वो कुरान की तारीख जैसे कि हमने बयान की है, जैसे मैंने आपके सामने सवाल भी उठा दिए, उनके जहन में वो सवाल आते हैं तो वो इन रवायतों को नहीं मानते, तो कहते हैं ये रवायतें तो काबिल एतमाद नहीं है। उनके यहाँ जो कुरान को इस्टेब्लिश करने का जरिया है वो है ही मैनुस्क्रिप्ट के ज़रिए से, मखतूतात के ज़रिए से। तो क्या अजब कि इस दौर में एक मरतबा फिर कुरान की हकानियत को हम तो नहीं शायद साबित कर सके, लेकिन ये मखतूतात अगर उनके सामने आ जाएं और उनके सामने ये कुरान मजीद की इस तरह से इस्तनाद पैदा हो जाता है तो ये एक खुदा की तरफ से।
बिल्कुल, कुरान की हकानियत तो पूरी दुनिया पर अल्लाह ने कायम की हुई है, इसलिए कि कुरान आप देखें दुनिया भर में एक ही कुरान है जो पढ़ाया जाता है। और शहजाद साहब इस तरह फरमा रहे हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, क्रिटिसिज्म किया है उस रिवायती नुक्ता नज़र पर, उस क्लासिकल नुक्ता नज़र पर जो कुरान की जमो तदवीन के हवाले से आमतौर पर कहा जाता है। आखिरी सवाल शहजाद साहब, वो सवाल ये है कि किरातों का इनकार
जी,
यानी किरातों को ना मानना और सिर्फ एक किरात को मानना, उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत सारे उलमा हैं जो कहते रहे हैं, आपकी जो राय है या गामदी साहब की राय को इस तरह आपने इस्टेब्लिश किया है वो जौहरी लिहाज से उन बाकी उलमा से कैसे मुख्तलिफ है?
देखिए हमने ये, मैंने ये कोशिश की है अपने असातिज़ा की रहनुमाई में कि दौरे अव्वल में जिस तरह से कुरान मजीद को कहा जाता था या बताया जाता था उस तक पहुंचा जाए। तो हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं कि देखिए ये जो किरात हफ्स है या किरात नाफे है या किरात दूरी है, ये 200 साल के बाद इस नाम से मंसूब हुई हैं। पहले 150 साल के अंदर इसको किरात आमा कहा जाता था, हत्ता कि इमाम बुखारी की बाज़ रवायतें हैं, मैंने वो इस किताब में दर्ज कर दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए कि इस आयत की किरात आमा ये है। और इसी तरह से किरात आमा के जो अल्फाज हैं, आप अगर मानिल कुरान का जो जॉनरा है उसको स्टडी करेंगे, अखफश हैं, फर्रा हैं, इनकी किताबें मानिल कुरान की, उसमें वो जगह जगह बेतकल्लुफ लिखते हैं कि हाज़ ही किरातुल आमा। सीबवे की जो किताब है जो ज़ाहिर के उमहातुल कुतुब में से है, उसके अंदर जब उन्होंने ग्रामर के प्रिंसिपल्स, ये वो लोग हैं कि जब ये मौजूद थे तो अभी ये कुर्रा हजरात पैदा नहीं हुए थे, यानी मैंने ये ट्रेस किया है कि इनकारी हजरात के पैदा होने से पहले का जो लिटरेचर है वो कुरान को कैसे रेफर करता है। तो उसमें मुझे फिर जगह जगह ये मिल गया कि कहीं पे भी वो किसी कार्य के नाम से रेफर ही नहीं करता, क्योंकि वो तो
ठीक
पैदा ही बाद में हुए हैं। हर जगह किरातुल आम्माल किरातुल आम्मा के अल्फाज आ रहे हैं। फिर मैंने एक और मुझे जो इसमें आप कह लें एक स्ट्रोक ऑफ लक थी, एक खुशकिस्मती थी, वो ये थी कि एक किताब हाथ लगी जो कि 4थी सदी के एक मुहक्किक की थी, जो इब्ने बतूता की तरह के थे, जो जगह जगह जाते थे। और ये उनका मतमा नज़र ये था कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो उन्होंने इक्लीमुल अजम एक स्टैब्लिश की है और एक इक्लीमुल अरब, यानी अरब ममालिक हैं और एक अजम के ममालिक हैं जहाँ मुसलमानों ने फतह किया। तो 4थी सदी हिजरी में आप ये देख सकते हैं कि फतूहत तो बहुत हो चुकी हुई थी। तो उन्होंने हर इक्लीम में ये जाके बताया कि कौन सी किरात कहाँ पाई जाती है,
अजीब,
कौन सी
अच्छा
फ़िका, हत्ता कि पाकिस्तान सिंध तक वो आए हैं,
अजीब,
कि कौन कौन सी फ़िकें और कौन कौन सी किरातें कहाँ हैं। तो आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि जो अकाली में अजम थी उनमें तो ये तकसीम मौजूद है, अकाली में अरब में हर जगह किरातें आम आएँ सवाए एक जगह के जो अकाली में अजम से मिली हुई थी।
अच्छा
हर जगह किरातें आम आएँ,
ये
हर
आपने
जगह।
इसका रेफरेंस भी
मैंने
किया।
रेफरेंस दिया, फिर नक्शा बना के बताया कि देखिए कि जो अरब के इलाके थे इसके अंदर तो ये थी और लोग इसी से वाकिफ़ थे। और मैंने फिर उनका एक इकतबास भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक शेख जो थे वो ये कहते थे कि जब कोई शागिर्द उनके पास आते और उनसे ये कहते कि भाई आप हमें ना फलां आदमी की किरात जो है वो सिखाइए, तो वो बड़े जुजबुज होते, वो कहते हैं अरे ये तो मतलब ये तो एक बड़ी आम सी चीज़ है। तो वो क्या करते, यानी आप किराते आमा को सिखाने के लिए वो किसी शागिर्द के हवाले कर देते, लेकिन जब उनसे कहते कि हमें खास आदमी की किरात सिखाइए तो अपने पास बिठा लेते। गोया के किराते आमा के बारे में उनका तासुर ये था कि भाई ये तो हर एक को पता है तो वो तुम किसी से भी सीख सकते हो। तो जिससे ये बात मालूम होगी कि उनके यहाँ भी ये चीज़
ये
मौजूद
इम्तियाज
थी, ये
मौजूद था।
इम्तियाज़ मौजूद था। जाहिर इस तरह की और चीज़ें बहुत सारी
तो
हैं
ये
जो मैंने।
जौहरी फर्क क्या वाकई हुआ कि आप असल में हिस्ट्री के अंदर जाके ट्रेस करके कुरान की रोशनी में इन किरातों के बारे में सवाल उठा रहे
जी,
हैं?
एक तो ये, और दूसरा इस्टैब्लिश हिस्ट्री बताते खुद जो कुरान से बाहर है। देखिए ना, कोई आदमी ये कह सकता है सवाल कि सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है कि जिस चीज़ को आप साबित कर रहे हैं वो उसके अंदर से साबित कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हट के देखने के लिए हमने ये फिर एक पूरा ये तरीका कोशिश की कि देखिए कि इंतकाल जो चीज़ों का होता है, मतून का होता है, इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ज़बान की है, लैंग्वेज की में जो अल्फाज हैं मुहावरे हैं उस वो डिक्शनरी बाद में बनी है, पहले तो वो चीज़ें मुंतकिल हुई हैं। तो इसकी सबसे ऐसी बड़ी मिसाल जो सबसे करीब है कुरान के इंतकाल से कि ज़बानें कैसे मुंतकिल हुई हैं, वो मुतवातिर मुंतकिल हुई हैं, उनके अल्फाज और उनके मानी मुतवातिर मुंतकिल हुए हैं। वो आप डिक्शनरी में तो बाज़ चीज़ों की तायद के लिए उनको देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही कि कुरान मजीद की जो किरात है वो तो मुतवातिर मुंतकिल हुई है लेकिन बाज़ जगह पर दर्ज भी कर ली गई है। लेकिन जैसे उसको पढ़ने में क्योंकि इख्तलाफ किसी ने अगर कर दिया, और वो मैं जाहिर है कि हमने भी यहाँ गुफ्तगू नहीं की, वो थोड़ी सी टेक्निकल है कि ये किरातों का वजूद तो हम इनकार नहीं कर रहे, इसकी हम तौजीह कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अर्ज़ाए उला की बस बाकियात हैं, बाज़ कारियों की तफरुदात हैं कि पैदा कैसी हुई हैं, यानी हम किरातों का इनकार नहीं कर रहे, किरातों की तौजीह कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन ये पैदा ऐसी हुई हैं। अलबत्ता पैदा होने का जो तरीका है वो खुद ये बता रहा है कि ये आहाद में से है।
बिल्कुल, और हिस्ट्री भी बता रही है कि इनका अहाद और आम्मा से क्या
बिल्कुल
फ़र्क है।
फर्क है।
तो बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शहजाद सलीम साहब। डॉक्टर साहब की किताब छप चुकी है, आपको नज़र भी आ रही है, इस किताब का एक ख़ुलासा भी इन्होंने मुरतब किया है, यानी बहुत छोटा मुख्तसर, वो भी आप अलग से पढ़ सकते हैं जो लोग तफसीली या टेक्निकल बहस के अंदर नहीं जाना चाहते। और फिर डॉक्टर साहब ने इसको पढ़ाया भी है बाकायदा, बहुत मुफस्सल इंग्लिश लेक्चर्स की सूरत में अपनी बात को उन्होंने बहुत तफसील से, वो तलबा वो उलमा जो इस फ़न और इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। ये किताब छप चुकी है, पाकिस्तान में भी मौजूद है और अनकरीब दुनिया भर के अंदर ये लोगों को मिल सकती है। मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर शहजाद सलीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अल्लाह की किताब की के बारे में जो शुभात लोगों के दिलों में पैदा होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी के 20 कीमती साल सर्फ किए, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी ये मेहनत जल्द रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया
आपका
आपका,
बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया।